याद आएगा। और तब सोचते सोचते सूर्य जैसे वहां पर चल करके उसको स्पर्श करना है उनका उद्धार। इसलिए क्या किया, जब ये लोग खोल नहीं सके तो कृष्ण ने कहा चलो एक बात करो सिखाओ, मैं भी खेलता हूं और तुम लोग पीछे से
धक्का मार
खेलो, जिससे कि हम लोग जैसे ये मैया के आंगन से निकल करके बाहर में खेलेंगे और खोल सके पैर को खोल भी लेंगे। इस तरह से सखा लोग पीछे से खेलने लगे और कृष्ण भी खेलने लगे और खेलते खेलते द्वारवाजे पर ले गए। उसे खेलने लगे, जब दरवाजे पर पहुंचे तो वहां पर जमज वृक्ष खड़े थे और उनका विशाल पेड़ नीचे से ही दो। कृष्ण अपने दरवाजे से उतरे और ठीक उन दोनों के बीच से होकर के निकल गए, पेड़ को नहीं छुआ। और उदोखल ऐसे चल रही कि दोनों पेड़ों के अंदर में अटक गए। सखाओं ने बहुत चेष्टा की जो उखल को सीधा करके और पार कर जाए, किंतु नहीं पार कर सके। चेष्टा विफल हो जाने के बाद में कृष्ण ने क्या किया, थोड़ा सा खेच दिया, यहां पर माफ करो, कृष्ण ने पेड़ों को नहीं छुआ, रस्सी जो बंधी हुई थी उसे भी नहीं छुआ, जो उनके उत्तर में बंधी उस रस्सी से भी नहीं छुआ जो जसोदा मैया ने बांधा था, छुआ किससे, ओखल से, वो भी जड़। और उसके छूने से ही क्या हुआ, कृष्ण की शक्ति संक्रमित होकर के रस्सी से ओखल में आकर के उनके स्पर्श करी दोनों पे जड़ से उखड़ करके फड़फड़ करके बिना आधी का बिना तुफान का बिना बरसाए खड़े दोनों वृक्ष इतने जोर से गिरे चारों तरफ में ब्रिज में बहुत जोर से शब्द हुआ, हाहाकार मच गया, कहां क्या हुआ। ब्रिज में कुछ होने पर लोगों को ये समझ में आता है कि कृष्ण पर कोई विपत्ति आए, बस झट वो नंद बाबा के घर की तरफ में दौड़ते हैं। जब बहुत जोर से शब्द हुआ तो जो जहां था वहीं से दौड़ा। इधर में क्या होता है, जम पेड़ टूटा तो भगवान की कुछ इच्छा हुई, जो पेड़ सीधे ऐसे नहीं गिरे, पेड़ गिरे कैसे, ऐसे और ऐसे। बीच में सखा लोग हैं और कृष्ण है, इसलिए कोई सखा पर कोई भी थोड़ा भी आँच नहीं आई और कृष्ण पर भी नहीं, एकदम उधर में साइड में उधर यही साइड जैसे पढ़ लो मत खाने सुखा नाम आप कृष्ण सुरक्षित, नहीं तो आगे यदि गाज ताले ऊपर पड़ो ताले की लो क्या जाने क्या होगा। कृष्ण ने देखा और सखाओं ने देखा कि दोनों पेड़ों से एक एक आदमी निकला, बड़ा सुंदर अद्भुत दिव्य मूर्ति, और निकल करके हाथ जोड़ करके बंधे हुए उखल में और कमर में भी रस्सी पड़ी हुई और कृष्ण को चारों तरफ से परिक्रमा किया और परिक्रमा करके हाथ जोड़ करके स्तुति किया जे प्रभो जहां जहां हमारा जन्म हो, जिस कुल में जन्म हो, खाओ जन्म जहां पर भी हमारा जन्म हो, आपके भक्तों का संग हो। आज नारद ऋषि के प्रतिकूल संग से, प्रतिकूल माने क्या, हरिकथा सुनने के लिए नहीं गया, श्रद्धा से नहीं गया और क्रोध से वे क्रोध में भरे हुए और उनका संग मिला और हम भी उस सुनने लायक नहीं थे, मत वाले थे अपने पांच मदों में, धन जन्म ऐश्वर्य सुख स्त्री और मत। और उस समय में नारद जी से और भी हमको अभी शाम पार करेंगे, आज मैं कोटि कोटि अनंत कोटि वर्ष तक तपस्या करके जो फल नहीं पाता आज आपके स्पर्श से मुझे, इसलिए जन्म जहां भी हमारा हो भक्तों का संग हो और उनके मुख से हम माफी करवाओ ऐसे कृपा और हाथ जोड़ करके और क्यों करके उत्तर दिशा में चले। कृष्ण ने क्या किया? कहा कुछ नहीं किंतु फिर भीतर ऊपर कृपा की। क्या किया कृपा करके? उनको तो उस योनि से उद्धार किया ही, नारजी का विषमपात भी दूर कर दिया और उनको गोलोक वृंदावन के खास मन में अपना पूर्ण सखा बनाया। कैसा सखा बनाया? क्योंकि उनका नाम रख दिया स्निग्ध कंठ और मधु कंठ, जो नंद बाबा के और गोपियों की राजसभाओं में वो कृष्ण और गोपियों की ये सब कथाओं को कहते हैं कथावाचक के रूप में। वो कथावाचक हो गए कहाँ? वृंदावन, वृंदावन में और नंद की सभा में मधुकंठ और स्निग्ध कंठ गोपियों की सभा में कृष्ण की कथाओं का ये वर्णन करते हैं। इस पर नारी के पूर्वक हमेशा पात से देखो तो ऐसे ही भक्तों का विफल नहीं जाता। वो करके शासन कर लेंगे तो शासन का कारण होता है अनर्थों से ये रहित हो और इनको शुद्ध भक्ति मिले। तो कभी कभी हम नहीं समझ पाए किंतु फल तो उसका कुछ होगा ही, आज नहीं कतल होगा। किंतु यदि साधक यदि अपराध करे उनके प्रति तब तो वो कृपा नहीं पाएगा, उसका अधिकार है, उसका अधिकार कृपा का अधिकार, तब तक फिर उसका बड़ा मुश्किल हो
जाएगा। क्रोध से तो अपराध हो गया इनका।
किनका?
ये मधु
वहां पर नारद जी तो एकदम परम सिद्ध में सिद्ध के परम सिद्ध है ना, उनकी कृपा भगवान की कृपा बराबर है, कभी कभी भगवान की कृपा से भी बल्कि उनकी कृपा बड़ी। किंतु यहाँ पर साधन जो गुरु है मध्यम अधिकारी उत्तम अधिकारी का है, यहाँ पर कुछ विशेष बातें हैं, इसलिए यहाँ पर महापराध हो जाता है, इसलिए खूब बच करके रहना चाहिए। इसलिए गुरु की कृपा को भी हम अपने ऊपर गुरु की कृपा सुनते। इधर क्या हुआ? इधर तो ये हुआ बच्चे सब लोग देख करके सहम गए और इतने में नंद बाबा स्नान करने के लिए ब्रह्मांड घाट जा रहे, पेड़ों की गिरने की आवाज सुन करके क्या हुआ आवाज की तरफ में चले और वहां पर ऊपर। इधर जसोदा मैया ने देखा, अरे पेड़ गिरा कहां हुआ? तपाशी में बगल में कहीं हमारा बच्चा देखा, अरे बच्चा तो वहां है नहीं, वो लड़के भी नहीं है, तो रास्ते के दरवाजे से ही निकलेंगे और दरवाजे के पास में पेड़ टूटे हैं, वो भी एकदम डरी हुई वहां पर। इतने में जितनी महिलाएं थी सब पहुंचे, ब्रज के जितने दूसरे लोग थे सभी लोग पहुंचे, नंद बाबा वहां पर पहुंचे। कृष्ण अब तक चुप थे, शांत थे, उनके आंसू सूख गए थे, किंतु जब नंद बाबा आए निकट में तो देख करके फफक फफक करके अब तो बड़े जोर से लंबी लंबी सांस ली। किस लिए? यदि दो बालकों में लड़ाई झगड़ा हो जाए, वो उसको मार रहा है उसको मार रहा है, और एक बलवान लड़के ने छोटे बच्चे को जरा दो थप्पड़ लगा दिया तो उस समय नहीं रोएगा, किंतु उसी समय भैया ने अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या लगे। और यदि उस जिसने मारा है उसकी मैया भी आ जाए क्या हुआ तो क्या करेगा, वो भी रोए मैया को देख करके बाप देख करके ऐसा ही होता है। यहाँ नंद बाबा जी आए गरीब बिहारी पेड़ गिर गए हैं, आज यदि सीधे गिरते तो क्या होता, आज यदि सीधा गिर तो पेड़ डाले की होता था तो छिलका मारा जी तो हमारे वृद्धावस्था से प्राप्त की हो तो ताले आर सब छेले जदि था तो यही 50 साठ के किए तो ताले की हो तो क्या होता। नंद दौड़ करके गए और रोते हुए कृष्ण को अपनी गोदी में बैठा लिया बैठ और बड़े लाड प्यार से पूछा बेटा बेटा तू रो मत, बतलाओ तू किसने बांधा, कौन बांधा के बांधा तुम्हारा, बार बार पूछ रहे। कृष्ण रो रहे खूब जोर से किंतु शिशक में जरा थोड़ा सा कम हुआ तो कहना चाहते हैं जी मैया ने बांधा, किंतु डर के मारे उनके मुख से ये नहीं निकलता जी मैया ने। प्रेम है कृष्ण नहीं बतला सके। हाँ, अपने पॉकेट से नंद बाबा ने एक लड्डू निकाला और लड्डू निकाल करके कृष्ण से सकते हुए बालक को हाथ में दिया। जितना बालक रो रहा हो, छोटा सा बच्चा, कोई खिलौना हो और कोई खाने की चीज हो, सब रोते हुए भी हंसने लगेगा, मुस्कुराने लग जाएगा, रुलाई बन। इसलिए नष्ट भावत उसके पिताजी ने स्नेह से लड्डू निकाल कर उनको दिया। कृष्ण लेकर के किसको शिक्षक थे, अभी रोना बन गया नंद बाबा। अरे बतलाओ कौन मांगा, कौन मांगा। अंत में उनके कान में ये बतलाया मैया। और मैया उस समय कहाँ है, जरा दूर खड़ी है, और महिलाएं भी दूर खड़ी हैं, जो सोदा जी काटे कटे हुए वृक्ष की भांति है, माने एकदम सूखे हुए वृक्ष की तरह है, न रो पाती है, न कुछ कह पाती है, न निकट में आ पाती है। निकट से आते पारे कान से पारे क्या नो हमारे भयंकर रूले द्वारा आके यही अवस्था, यदि मरेंगे तो ताले की बोलो क्या होगा। इसलिए वही पर खड़ी है चुपचाप सूखे हुए पेड़ की। नंद बाबा ने कहा कौन मारा, कौन बांधा। उन्होंने कान में कहा मैया। बड़ी निष्ठुर, मैं तो नहीं जानता था कितनी निष्ठुर है। अच्छा, बस क्रोध में एकदम फट गए, किंतु ऊपर से कुछ कहा नहीं, देखा वो वहीं से तिरछी नजर से। और यशोदा जी ने भी देखा और भी उनका चित्त ऐसा हो गया। नंद बाबा ने किया क्या, उसको खोल ले। अब बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से करते 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 किसी को बच्चों से पूछा, अरे ये पेड़ कैसे गिरे, पेड़ कैसा है। बाबा 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 टुकलाते हुए बोलने लगे। वो कृष्ण ने उखल लगाया, उखल, और फिर पे 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 गी 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 गी। और फिर उसमें से दो दो दो
आदमी निकले,
देवता निकले, दे दे देवता निकले। और उन्होंने काका कनाई को पापा पापा परिक्रमा किया, और पापा परिक्रमा करके उसको हाथ जोड़ करके कुछ कहा, और फिर उत्तर इधर चले। ये कभी हो नहीं सकता, ऐसा नहीं होता। कृष्ण के खींचने से ये पेड़ निकले और उसमें से देवता निकलते, इसकी स्तौ स्तुति करेंगे छोटे से बालक की। उन्होंने विश्वास नहीं किया, सोचा कि कंस के किसी दुष्ट असुर ने ऐसा किया, किसी कंस के चरने कंस ने आदेश दिया होगा, वो पेड़ के अंदर में समा हो गया होगा और उसके वजह से ऐसा हुआ, अन्यथा ऐसा होना। फिर कृष्ण बड़े क्रोध में तम तम आ गए यशोदा जी, कुछ कहा नहीं, बड़े गंभीर है ना, साधारण आदमी नहीं है कृष्ण के पिताजी, में बड़े गंभीर। उन्होंने बाएं कंधे, दाहिने कंधे पर बलदेव जी को, या बाएं गोदी में दाहिने गोदी में बलदेव जी को, और बाएं गोदी में कृष्ण को कन्हैया को बैठाया, और दोनों को बैठा करके वहीं से थोड़ी दूर पर है ब्रह्मांड घाट में गए। बच्चों को स्नान कराया, जितने वो कालिखा आंखों का काजल लग गया था नल नल करके धोया, और उनको स्नान कराया, और स्नान करके अपने भी स्नान किए, और तब तक कितना बन गया, 12-1 बन गया। कृष्ण ने भी कुछ नहीं खाया, नंद बाबा ने भी कुछ नहीं खाया, आज सवेरे का कलेवा भी नहीं हुआ। उनको स्नान करा करके घर में ले आए, क्या किया, कृष्ण को देखा ये बहुत भूखा है, बल दे। गाय के निकट में गए और गाय का दूध वो करके उनके मुख में लगाया, और मिश्री पॉकेट से निकाल करके उनको मुख दे, धारोष्ण मिश्री के साथ पेट भर करके दोनों बच्चों को। एक गैया कितने 40 किलो अभी हॉलैंड में दूध देती है, और कृष्ण की गैया कितनी देती होगी, अरे 40 किलो का कितना है? 40 किलो रूप से कृष्ण का और बलदेव जी का पेट भर करके यहाँ पर आए। आज किसी को सास नहीं हुआ, घर में रसोई नहीं बनी, बड़ी मस्ती से और थोड़ी देर में थोड़ा सा कुछ बनाया किसी ने, और नंद बाबा ने कृष्ण को कुछ खुला दिया या अपने थोड़ा सा ग्रहण करके कुछ नहीं कहा, किसी से बोले नहीं, बच्चों के साथ में खेल रहे हैं। इतने में शाम हो गई। जब शाम हो गई तो रूपानंद जी की पत्नी जेठानी जी नंद बाबा की भी मैया के समान अरुणी मैया और दूसरी दूसरी महिलाएं वहां पर उपस्थित थी। बलदेव जी को सिखलाया, अरे तब उसको पकड़ना है, बाबा की गोदी में बैठा है वहां पर। जब दाऊ जी जब गए कृष्ण को पकड़ा था, आज कृष्ण ने ऐसा उसको धक्का दिया जो और दिन में ऐसा नहीं। बलदेव जी देखते रह गए। अब महिलाएं सब निकल आए। किसी ने कहा, अरे बेटा भाई मैया इतनी रो रही है, चलो मैया के पास। नहीं, नंद बाबा ने कहा मैया के पास जाएगा, उनको भी दया आ गई, जिसके अभी तक खाया नहीं, शाम हो गई, इसकी मैया नहीं मर रह जाए। इसलिए उन्होंने समझाया नहीं जाए। रोणी मैया ने या उपानंद की पत्नी ने, इनकी इनकी क्या लगे कृष्ण की बड़ी मैया, बेटा जाएगा नहीं, किसके साथ में खेलेगा? तो पिताजी और भैया के साथ थे। रोहिणी मैया ने उनको बुलाया कृष्ण को, अरे बेटा आ जा। तो वो आज क्रोधित होकर के बोले, भैया आज रोहिणी मैया मैया मैं कर रहा था, तू कहां थी उस समय? तो थी नहीं उस समय, नहीं कहां थी? उपानंद जी के घर, अब तेरे साथ ही नहीं उनके पूरी देखिए। तब उपानंद की पत्नी ने कहा, अरे खाएगा क्या? तो पिताजी हमको दूध और मिश्री खिलाए, सोएगा कहा? आज तक तो अकेले नहीं सोया, मैया की गोद में सोया, अब कहां सोएगा? तो बाबा की गोद में थे, नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। उस समय में शायद नंद बाबा ने कहा या उपानंद की पत्नी ने कहा, जैसे तेरी मैया जैसी आ रहा मैया तो ऐसी मत नहीं जैसी नौबत है, तो बस सुना कि मैया मर जाएगी मेरे, बस अब रहा नहीं गया, हाँ तो साथ दिया मैया मैया का। जब उस समय रोने लगे तो रोही मैया और सब महिलाएं रोने लगे, नंद बाबा की आंखों में भी आंसू आ गए, सब समाज सब रोने लगा। उस समय में रोहिणी जी कृष्ण को गोदी में लेकर, कृष्ण ऐसे उनकी गोदी में चले और लेकर के जहां यशोदा जी अभी रो नहीं पा रही थी, सुखे वे काट की तरफ में थी, प्राण का संचार नहीं हो रहा, उनकी गोदी में बैठा। जब गोदी में बैठा दिया एकदम लावा जैसा फूटा, लावा मारे पर्वत से जैसे लावा फूटता है ना,
अग्नि
अग्नि उसी प्रकार से आप रोने लगे, बेटा बेटा बेटा। और कृष्ण क्या कर रहे हैं? वो भी मैया मैया का करने लगे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपना स्तन दिया, कृष्ण से सत्य में धीरे धीरे दूध पीने लगे, और धीरे धीरे मैया का ये भी शांत जब धीरे धीरे हो गया। अब तक रसोई नहीं बनी, अब थोड़े रोही मैया ने रसोई की व्यवस्था। नंद बाबा को बुलाया गया, वो आए, कृष्ण और बलदेव दोनों बैठे हुए। जब रसोई सामने आई तो कृष्ण को खिलाया और बलदेव जी को खिलाया, और कृष्ण को कहा मैया के थोड़े लिया टेने लिया। आए कृष्ण गए और अपनी मैया का आंचल पकड़ करके, उस समय कैसी करुण दशा होगी, यशोदा जी अपने आंखों को आंसू को फिर संभाल दी, बड़ी पैकेट की स्थिति है, बड़ी पैकेट मैंने यशोदा मैया को खींच करके लाए थे। नंद बाबा ने नीचे नजर करके कहा, तुम नहीं खाएगी तो हम कैसे खाएंगे, नहीं खाएगी तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना बच्चों को, ये बच्चे हैं। मैं तो जानता हूँ तुम ये स्कूल नहीं हो, और ऐसा सुन करके उनके कलेजे में कैसा लगा होगा, इसमें दाखिल हो तुमने लौकिक कृष्ण ऋषि के द्वारा ब्रज का भाव बताओ। दूसरा लाख चेष्टा करो, लाख तपस्या करो, वैदिक भक्ति भी करो और भी कुछ करो, नहीं यशोदा मैया के अनुगत में कोटि कोटि वर्षों तक ऐसा अनुराग पूर्वक उनके अनुगत में उनके भावों के लोप से यदि भजन किया जाए तो यशोदा मैया का भाव हमारे हृदय में आकर्षित हो, और यदि गोपियों का पाना चाहते हो तो क्या होगा, सुर्खियों ने जो किया, दंडकारण्य निवासियों ने जो किया, जौ की अजौकी ने जो किया, तब तो पृथ्वी नहीं तो लक्ष्मी जी को भी नहीं होगा, जगह पत्नियों को भी नहीं हुआ, पीछे जन्मों में कुछ हुआ होगा या नहीं मैं नहीं कर, किंतु उन जन्म बचू। इसलिए गोपियों के लिए ये महाप्रभु जी ने स्वयं रूप गोस्वामी को और सनातन गोस्वामी को बताया, यह भाव बहुत ही दूर है। यहां तक कि सख और वात्सल्य अगोचर, सख और वात्सल्य के लिए भी अगोचर भाव है, ये केवल मात्र गोपियों के अनुगत में भजन करने से उन्हीं की कृपा से ये भाव का प्रथा नहीं पाए, इसलिए इतना दुर्लभ ये चीज। और हम लोग भी पावन होकर के चांद के समान इसको देखने के पाने के लिए लालसा कर रहे हैं, तो है बड़ा दुख, लेकर वो सारण भी है, एक पैसे के लिए थोड़ा सा परिश्रम कर दो हो जाएगा, और चिंतामणि करने चिंतामणि पाने के लिए वो सहज से नहीं होगा, ये चिंतामणि का भी चिंतामणि होगा। इस तरह से फिर नंद बाबा ने यशोदा मैया ने रोही मैया को कहा ये खा लेता हूं खींच पाएंगे, इसके बाद उन्होंने भी नंद बाबा ने पाया, बच्चों को खिलाया, फिर यशोदा मैया ले रोही मैया लेकर के आई, यशोदा को खिलाई, सब गोपियों को खिलाई, सब लोगों को खिलाई, इसके बाद में कृष्ण को गोदी में लेकर के, तब तक रात हो गई, अब समय हो गया है, इसी समय में कृष्ण को गोदी में लेकर के बड़े उल्लास से उनको सुलाने लगे। कृष्ण कहा मैया एक कहानी कहो, मैया एक कहानी कहो, तो वो उल्लास से कहानी, एक रामचंद्र थे महाराज दशरथ थे, उनके एक पुत्र थे राम, हमने पिता के आदेश से बन में गए, हाँ अपनी अपल के अभारी हो रही, हाँ तो बन में गए तो उनकी सीता को चोरी कर दिया राम, चोरी कर लिया लक्ष्मण धनुष लौ, और ये कर करके जो सुन रहे थे वहीं से कुछ करके बस धनुष लौ आवे, इस तरह से लीलाएं सब होती है। इसलिए नाम का स्मरण भारी नाम करो, अपने नाम का तन नाम रूप चेकदार नाम करो रसना मनसी नियोजन कृष्ण ब्रजे कदान रागी तारम भेद अभिलाम, ये समस्त उपदेशों का सार है। आप लोग लीलाओं का स्मरण करते हुए ब्रज की परिक्रमा करें, मन से स्पर्श कीजिए, शरीर से स्पर्श कीजिए, और वैष्णव के अनुगत में इस प्रकार से परिक्रमा करके सफल
आप कल बताओ।
लड्डू के लोभ से दोनों ताल ठोक करके जैसे लड़ते हैं ऐसे ताल और ऐसे ताल, और परमाणु जैसा मल्ल युद्ध में जैसा करते हैं वैसा ही कर करके और लड़ने। कभी ऐसे मालूम है अभी बलदेव कृष्ण को पछाड़ेगा, जो भी नीचे ले जाता है ले जाने की चेष्टा, इतने में कृष्ण ने ऐसे दाव मारा कि बलदेव जी एकदम उलट करते और उल्टे उल्टे थे किंतु गिरे नहीं, एकदम खड़े हो गए। सब लोग ताली बजा रहे। इस तरह से दाव के बचपन से ही, अभी 2.5-3 वर्ष के थे तब मल्ल जी को, कभी बलदेव जी नीचे आते हैं।